ऑस्ट्रेलिया के सिटीजनशिप कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव से बहुत से कम्युनिटी ग्रुप्स बटे हुए हैं। एथनिक कम्युनिटीज का कहना है कि इस मामले में उन्हें अनफेयरली टारगेट किया गया है, जबकि सरकार का मानना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और नागरिकता का अर्थ साकार होगा। प्रधानमंत्री टर्नबुल अक्सर ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे सफल मल्टीकल्चरल देश कहते हैं, लेकिन उनके सिटीजनशिप कानूनों में बदलाव के प्रस्ताव से कई समुदाय शॉक में हैं। बदलाव कई हजार लोगों पर अपना असर करेगा। इसमें इटली से 2010 में माइग्रेट हुई बिजनेस एनालिस्ट सारा बाल्सिमेनी भी शामिल हैं।
I moved to Australia initially with a working holiday visa. It was supposed to be an experience. And then I just fell in love with the country and I decided to try and stay. I was only 2 weeks away from completing my application. I had already collected all my documents, officially translated them, found a witness for my identity declaration. I was ready to apply.
सुश्री बाल्सिमिनी कहती हैं कि समाज में अच्छी तरह घुलने मिलने के बावजूद वे नागरिकता के सवाल पर खुद को असहज पाती हैं।
It's devastating. It puts lots of uncertainty on my life, and it was shocking for me that the government was trying to implement these changes retrospectively for people that had already qualified and already paid for an understandable fee, already planned their life accordingly.
एक सीनेट इंक्वायरी में इस मुद्दे पर करीब 13,000 सबमिशंस किए गए, जिसमें सरकार के बदलाव के समर्थन में और विरोध में दोनों ही शामिल थे। लेकिन कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की मल्टीकल्चरल और सबको साथ लेकर चलने की छवि को बड़ा धक्का लगा है। हालांकि कोएलिशन का कहना है कि कड़े नागरिकता कानून राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। ऑस्ट्रेलियन अरब काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव रेंडा कैटम कहते हैं कि ये छुपा हुआ डिस्क्रिमिनेशन है।
आई एम नॉट श्योर हाउ इट विल इंप्रूव सिक्योरिटी। इट लुक्स लाइक इट्स ओनली द ब्रांड कंट्रीज दैट हैव बीन टारगेटेड। सो इन माय ओपिनियन दिस इज अबाउट रेस बेटिंग। इट इज अ ग्रेट कंसर्न बिकॉज़ वी नीड टू काइंड ऑफ स्क्रूटिनाइज we need to look at this very carefully. What messages is it sending? What messages is it sending to the people who are already contributing to this country, to society? What message is it sending to the general community about the people who are applying to become citizens of this country?
वहीं असिस्टेंट इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक कहते हैं कि सरकार को भरोसा है कि ये बदलाव नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हैं और ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट इंटरेस्ट में भी।
Across the board, they'll apply to everybody equally. We're looking for people that want to come here and integrate, adopt Australian values and become great members of the Australian community regardless of where they're from. And the government's measures are designed to stop those people who don't want to come here and integrate and become Australian citizens with those values that you would expect.
ऑस्ट्रेलिया की फेडरेशन ऑफ एथनिक कम्युनिटीज काउंसिल के डायरेक्टर जोसेफ कैपेटो चेतावनी देते हैं कि देश की मल्टीकल्चरल प्रतिष्ठा दांव पर लगी है।
It is under threat, and I think that history is a good guide for the future. I think that the good sense of Australians, the fair go of giving a fair go to everyone, should prevail. And the fact that we have done so in the past, that everyone who has reached our shores have been given a fair go, that's what made Australia today, and we should not threaten it with proposed laws that will make it very, very difficult for many new arrivals.
भाषा के कड़े नियमों और 4 साल के वेटिंग पीरियड से चाइनीज कम्युनिटी खासी प्रभावित है। एसीटी में चाइनीज ऑस्ट्रेलियन एसोसिएशन के अध्यक्ष चिंग वॉन्ग कहती हैं,
They dismay at the proposed changes. Everybody is worried. The Chinese community, like other multicultural communities, a lot of us feel that we've been targeted in terms of because English is not our first language. We have people that who've been here for nearly 10 years, but with the changes of rules, they know that they have to wait for another 4 years because they have to start all over again. Australia might lose a lot of those well-educated and well-young professionals.
हालांकि वेटिंग पीरियड में बढ़ोतरी दूसरे पश्चिमी देशों की तर्ज पर ही है, अमेरिका में जहां परमानेंट रेजिडेंट को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने से पहले 5 साल इंतजार करना होता है, कनाडा में पिछले 6 में से 4 साल वहां रहना जरूरी है, फ्रांस में 5 तो जर्मनी में 8 साल का वेटिंग टाइम है। सीनेट कमेटी के चेयर लिबरल सीनेटर इयन मैकडोनल्ड कहते हैं कि जो लोग पहले से नागरिकता के लिए अप्लाई करने की स्थिति में थे, नया कानून उन पर लागू नहीं होना चाहिए।
There should be some transitional power in the minister to allow individual cases where that was appropriate. Anyone who wants to be a citizen and who is genuine will be able to get there. Might take them a little bit longer, but they will get there and they won't have any problem. I think Australia will be better for it. Better for having a citizenship that really means something and that counts.
मेलबर्न में भारतीय मूल के सामाजिक कार्यकर्ता मनोज कुमार का कहना है,
ये सिंपल सी चीज है कि नागरिकता के लिए ऑस्ट्रेलियन प्लेज और वैल्यूज समझना जरूरी है, और ये दो चीज समझने के लिए बहुत लोगों ने बोला है, आपका इंग्लिश का बैंड 6 हो या 4 हो या 5 हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि ये सरकार जो एक अंग्रेजी का जो लाया है 6 बैंड का अननेसेसरी ट्रबल, वो टोटली अनफेयर है, अनएथिकल है, और उसको बोल सकते हैं कि आज तक ऑस्ट्रेलिया में जितने भी माइग्रेंट आए हैं उन सबों को लेकर ये माइग्रेंट के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है, नंबर 1। नंबर 2 है कि जो लोग ऑलरेडी 4 साल से रह रहे हैं तो 1 साल परमानेंट रेसिडेंसी में रहेंगे और उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, फिर उनको सिटीजन लेके 4 साल वेट करने की जरूरत क्या है? आप क्यों 4 साल वेट करेंगे? 4 साल ऑलरेडी वो रह चुके हैं तो उनका लॉ एंड ऑर्डर, उनका बिहेवियर कैसा है, लॉ एंड ऑर्डर को रेस्पेक्ट कैसा करते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। और ऑस्ट्रेलियन वैल्यू क्या है? ऑस्ट्रेलियन वैल्यू फेयर गो फॉर एवरीवन है, तो आप तो यही अनफेयर कर रहे हो माइग्रेंट के साथ।